खाने की फिक्र मत कीजिए, मैंने अम्मी से कह दिया है। सुबह तक पैसे आ जाएंगे, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया करूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें पैसे मंगवाने की क्या जरूरत है? अरमान ने तुरंत कहा। मैं हूं ना? नूर ने हल्का सा सिर हिलाया। ये बात पैसे की नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। मैं सिर्फ खाने के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर अरमान चुप हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? उसने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, नूर ने साफ कहा। मैंने आज तक अपने अब्बा के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही कभी मांग सकती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। रात का खाना खत्म हो चुका था। नूर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अरमान अपने घर वापस लौट गया। डाइनिंग एरिया अब शांत था लेकिन उस सन्नाटे के पीछे बहुत सी अनकही बातें थीं। माहिरा रेहाना बेगम के पास आकर बैठ गई। रेहाना बेगम के दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। आखिर आज जुबेदा बेगम अरमान की किन हरकतों की बात कर रही थीं? उन्होंने सीधा माहिरा से पूछा। आज तुम्हारी मॉम अरमान की किन हरकतों की बात कर रही थीं? माहिरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ बात को टालने की कोशिश की। आप तो मॉम को अच्छे से जानती हैं, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उनकी आदत है, उसने लापरवाही से जवाब दिया लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। उधर किचन में सादिया काम कर रही थी लेकिन जैसे ही ये बात उसके कानों तक पहुंची उसके हाथ रुक गए। वो बाहर नहीं आई पर उसका पूरा ध्यान अब उनकी बातों पर था। वो हर एक शब्द सुनना चाहती थी। अरमान ने ऐसा क्या कर दिया? रेहाना बेगम ने हैरानी से माहिरा से पूछा। दरअसल जुबेदा बेगम उन्हें काफी परेशान लगी थी। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं बताया था लेकिन इशारों में इतना जरूर समझ आ गया था कि बात गंभीर है। अरमान के बिस्तर से किसी लड़की की हेयरपिन मिली थी, चांदी की पायल का बिल मिला था और इससे पहले भी उसकी गाड़ी से एक लड़की का ब्रेसलेट मिल चुका था। आप मॉम को अच्छे से जानती हैं, माहिरा ने हल्की नाराजगी के साथ कहा। वो ऐसी ही हैं, हर बात का गलत मतलब निकालती हैं। रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वो जरूरत से ज्यादा फिक्र करती हैं। फिक्र नहीं, नेगेटिव सोचती हैं, माहिरा तुरंत बोल पड़ी। माहिरा, रेहाना बेगम ने उसे टोका। ये तुम क्या कह रही हो? माहिरा चुप तो हो गई लेकिन चेहरे पर साफ था कि वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। रेहाना बेगम कुछ पल सोचती रही फिर बोली, जुबेदा, मुझे उसके बारे में समझ नहीं आया। कहाँ तो वो नूर कितना खिलाफ थी और अब आज नूर का इतना ख्याल किया। तुम्हें और अरमान को नूर को बाहर खाना खिलाने भेजा। सादिया जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी ध्यान से उनकी बातों को समझ रही थी। उसी दिन रेहान भाई ने सबके सामने माम का हाथ पकड़ा था जो वो नूर पर उठाने वाली थी, माहिरा ने आगे कहा। वो दिखाना चाहते थे कि नूर इस घर में कितनी अहमियत रखती है, रेहाना बेगम ने बीच में ही कहा। बस इसीलिए रेहान के कहने पर ही मॉम नूर के प्रति अच्छा रवैया रखने लगी हैं, माहिरा ने कहा। तो क्या लगता है कि मैं भी नूर का ख्याल रेहान के डर से रखती हूँ? रेहाना बेगम ने सीधा सवाल किया। माहिरा थोड़ी संभलते हुए बोली, नहीं, डर नहीं, लेकिन आपने नूर की जिम्मेदारी ली है इसीलिए आप उसका ख्याल रखती हैं, रेहाना बेगम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो इकबाल भाई की बेटी है, ये एक बड़ा कारण है, लेकिन सच ये है कि वो दिल की बहुत साफ और स्वभाव की अच्छी लड़की है। इतना सुनते ही माहिरा का चेहरा उतर गया जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी। माहिरा से नूर की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई, उसने तुरंत कहा। वो हमसे अच्छे से इसलिए बात करती है क्योंकि उसे यहाँ रहना है, इज्जत और प्यार दिखाना उसकी मजबूरी है, फिर थोड़ी रुक कर बोली। और रही बात रेहान की, उनके फैसले के आगे तो इस घर में कोई बोल ही नहीं सकता, ये आप भी जानती हैं। रेहाना बेगम ने गहरी नजरों से माहिरा को देखा और बोली, लेकिन फैजान को बचाने के लिए रेहान का हाथ नूर के सिवा कोई नहीं पकड़ सका था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ताकतवर के साथ खड़ा होना आसान होता है लेकिन किसी कमजोर के लिए सच के साथ खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं, रेहाना बेगम की आवाज में गर्व था। और ये बात नूर में है, उन्होंने ठहर कर कहा। नूर मोहब्बत और इज्जत दोनों डिजर्व करती है और इस घर में रहने का पूरा हक भी रखती है। उनकी बात सुनकर माहिरा चुप हो गई और सादिया अब गहरी सोच में डूब चुकी थी। अगली सुबह फैजान अकेडमी जाने के लिए अपने कमरे से निकल ही रहा था कि उसने नूर को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही उधर से उनींदी सी आवाज आई। हेलो, फैजान हल्के से मुस्कुराया। तो क्या आप अभी तक उठी नहीं? नूर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। आपने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, 9 बज रहे हैं, आपको उठ जाना चाहिए, फैजान ने कहा। फिर थोड़ा रुक कर बोला, और बताइए कैसी हैं आप? नूर ने सीधा सवाल किया। पहले ये बताइए आपने फोन क्यों किया है? फैजान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास कोई खास वजह नहीं थी, बस ऐसे ही, उसने धीरे से कहा। आपकी फिक्र हुई, सोचा पूछ लूं। और हाँ, सादिया का बिहेवियर अब ठीक है? नूर को उसकी बात सुनकर हल्की हैरानी हुई। सादिया का बिहेवियर ठीक ही है, कभी कभी जैसा होता है वैसा, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? फैजान ने बात संभालते हुए कहा। बस ऐसे ही, लगा कि आपको परेशान कर रही होगी, नूर की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, फैजान थोड़ा चुप हो गया। नूर आगे बोली, मेरी फिक्र के लिए रेहान भाई और अरमान है, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। उसके लहजे में जो दूरी थी वो साफ महसूस हो रही थी। फैजान को उसकी बात बुरी तो लगी मगर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, ध्यान रखिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद कुछ पल तक दोनों ही खामोश रह गए। फोन कटते ही नूर कुछ देर तक मोबाइल को देखती रही, फिर धीरे से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला, सादिया अंदर आई। नूर ने उसे इस तरह अचानक आते देखा तो थोड़ा हैरान हो गई। तुम इतनी सुबह? उसने पूछा। सादिया सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बिना घुमाए फिराए बोली, तो तुमने क्या सोचा? नूर समझ नहीं पाई, किस बारे में भाभी? सादिया की आवाज में अब तल्खी आ गई। वही जो मैंने तुम्हें कहा था, शादी के बाद जाने के बारे में। नूर एक पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सादिया का ये बदलता हुआ बिहेवियर आखिर क्या चाहता है। कभी वो उसके लिए कॉफी लेकर आती थी जैसे उसे अपनी बहन मानती हो, और कभी ऐसे बात करती थी जैसे वो यहाँ बोझ हो। नूर ने खुद को संभालते हुए कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? सादिया ने सीधा सवाल किया। तुम कब जा रही हो मुझे ये घर छोड़कर? नूर ने तुरंत जवाब दिया, मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगी, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। सादिया की आंखों में गुस्सा साफ छलकने लगा। मतलब तुम नहीं जाओगी? नहीं, नूर ने साफ लहजे में कहा। बस इतना सुनना था कि सादिया गुस्से में मुड़ी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही कमरे में सन्नाटा छा गया। नूर अब सच में परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सादिया आखिर चाहती क्या है, कभी अपनापन और कभी इतनी दूरी और नफरत। नूर का आने वाला टाइम कितना मुश्किल होने वाला था नूर को इस बात का पता भी नहीं था। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ये लोग जो उसके लिए अच्छे बनी हुई हैं उसके इतना खिलाफ हो जाएंगे कि उनकी जिंदगी का संघर्ष इतना मुश्किल बना देंगे, और उसे वक्त कोई उनका साथ देगा तो वो सिर्फ फैजान होगा जो बिना आगे आए उसके लिए वो सब करेगा।
प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। आपकी कॉमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।